कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा
एक बार जोर से बोलिए
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय हो।
सबका दोबारा स्वागत है। हरे कृष्णा।
तो दिवाली आ रही है तो आपको मुझे बताना है कि दिवाली में कितने कितने उत्सव होते हैं। दिवाली मनाते हैं ना सब लोग, अच्छे कपड़े खरीदते हैं, खाना खाते हैं, अच्छी तरह से चकली बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, बेसन का, रवे का, इसका उसका, ड्राई फ्रूट का। तो वो खाली भोजन करने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए दिवाली है? वो तो हमारा सेलिब्रेशन है। जो घटनाओं के कारण दिवाली मनाई जा रही है उसके वजह से वो हमारा समारंभ है, हम लोग उसको मना रहे हैं। तब लोग खाली मनाने के लिए मनाएंगे आजकल लोग आजकल केवल मनाने के लिए मनाते हैं, क्या पीछे है पता नहीं, एंजॉय करने का और एक मौका है बस, दैट्स ऑल। तो आपको बताना है शुरू कब होता है दिवाली? 13 धनतेरस, धनत्रयोदशी, उसके बाद में क्या होता है? नरक चतुर्दशी, उसके बाद में क्या होता है? लक्ष्मी पूजन, फिर उसके बाद बलि प्रतिपदा, उसके बाद भावबीज, पाड़वा कहते हैं उसको, बलि प्रतिपदा को, और फिर वो उखल बंधन कभी और गोवर्धन पूजा कभी, वो बीच में खा गए हम लोग। उखल बंधन कभी होता है? दीपावली के दिन। दीपावली कभी होती है? अमावस्या के दिन। और गोवर्धन पूजा कभी होते हैं? उसी दिन होती है। हाँ, तो वो सब बताऊंगा मैं अभी आपको। और इतना बड़ा दिवाली का उत्सव है, लेकिन अभी आप लोगों को तो सब पता है, लेकिन अभी जितने भी अभी आप सब लोग थोड़े से उम्र वाले भी है, लेकिन बहुत लोग जो युवा अवस्था में हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आईटी में है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, कोई फॉरेन कंट्री में है, कोई पीएचडी है, कोई डॉक्टर है, तो उनको टाइम नहीं है। और कुछ कुछ जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं, कभी हैदराबाद, फिर बेंगलोर, फिर हुबली, फिर पुणे, फिर यूएसए, हाँ बे एरिया, सिएटल। तो बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके, उनको कुछ नहीं बता सकते वो, क्योंकि खुद ही 12-15 घंटे इतने बिजी रहते हैं, कौन सा उत्सव कभी आया कभी गया, कौन सा पब्लिक हॉलीडे, उतना पता है बस, बाकी उसके आगे कुछ पता नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारी अगली पीढ़ी है वो ब्लैंक रह जाती है, कम्प्लीटली ब्लैंक, उनको पता ही नहीं है। यहाँ तक अभी ज़िंदगी बदल गई है कि भारतवर्ष में रहते हुए भी हम फॉरेनर जैसे ही है, गणपति बप्पा कौन है और नवरात्रि की देवी कौन है पता नहीं है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक दारिद्र्य, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, ये दरिद्रता है। हम लोग सोचते हैं कि दरिद्रता मतलब केवल धन से संबंधित है, धन है समृद्धि है, धन नहीं है तो दारिद्र्य है। सारा अपना जीवन का साइकिल जो है ना पूरा वो पैसे के आसपास घूमता है। आप अच्छे हो मतलब क्या, आप अच्छे धनी हो, और हम आपको देखेंगे भी नहीं अगर आप धन से गरीब हो। तो कल्चर की जो रिचनेस है ना वो कोई आजकल पहचानता नहीं है, नोबडी केयर्स। कल्चर की समृद्धि या विद्या की समृद्धि, अब आप समझो 10 डिग्री प्राप्त कर चुके हो लेकिन आप गरीब हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा, और आपके पास 10वीं का डिग्री भी नहीं, 10वीं फेल है आप, और आपके पास 50 गाड़ियां हैं, 50 बंगले हैं, तो सब लोग आपको सलाम करेंगे, अंगूठा छाप आदमी को भी। तो सारा हमारा जो कीर्ति है ना, या यश है, या हमारा जो जीवन में देखने का तरीका है, वो सब पैसे के ऊपर डिपेंड है। कोई अगर बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आया, बड़ी गाड़ी से उतरा, तो बोलेंगे कोई बड़ा आदमी है, फिर वो गुंडा हो तो चलेगा लेकिन अरे बड़ा आदमी है ना। तो इसमें ना सबसे घटिया जो तरीका है देखने का वो है धन के दृष्टि से, उससे अच्छा दृष्टि है विद्या के दृष्टि से, ये बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन सबसे बेस्ट दृष्टि है सांस्कृतिक दृष्टि, कि कल्चरली हम लोग कितने प्रगत हैं। और कल्चर शुरू होता है बड़ों का चरण छूने से, यहाँ से शुरू होता है वो, सुबह उठ के पहले भगवान का स्मरण करने से शुरू होता है, माता पिता का रोज चरण छूने से, माता पिता ही नहीं जो बड़े एक बुजुर्ग मिलते हैं कोई पहचान के होंगे तो वो चरण छूना, ये हमारा कल्चर है। और ये हम लोग करेंगे ना तो ये हमारे बच्चे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप करेंगे अपने सासू माँ को या अपनी माँ को या अपने पिताजी को या सासू ससुर को, तो आपके बच्चे आपको करेंगे, और वो करेंगे जब बड़े होंगे तो उनके बच्चे फिर उनको करेंगे, और ये हमारी संस्कृति है। इसलिए बार बार मैं कुछ कुछ 3 महीने के बाद मेरे काउंसलर्स को बताते रहता हूँ कि आपके बच्चे आपके चरण छू रहे हैं क्या, आप अपने माता पिता के चरण छू रहे हैं क्या, रिमाइंड करना पड़ता है, क्योंकि झुकना बहुत मुश्किल है कलयुग में, लेकिन जो झुकता है ना उस पर सारी कृपा होती है। कोई झुकेगा ना तुरंत आपका हाथ ऐसा ऊपर आएगा ऑटोमेटिकली, आपको नहीं देना है फिर भी आपका ऐसा, क्योंकि वो झुका हुआ है ना, जो झुकता है नम्रता से उसका उसके पास आशीर्वाद अपने आप पहुंच जाता है। तो ये जो कल्चर है ये भारतीय कल्चर है, ऐसा कल्चर है ना दुनिया में किधर नहीं है। अब इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, सब लोग आपको बोलेंगे वाह अपने अमेरिका में पढ़ते हो, तुम्हारा बच्चा अमेरिका पढ़ता है, वाह क्या बात है, उधर अभी PhD करने गया है, उधर MS करने गया है, उधर पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया है, उधर काम भी उधर करता है, शादी भी उधर कर ली है, घर भी उधर ले लिया है, वाह। इसके हम लोग आदर से देखते हैं, बच्चा भी बोलने में गर्व करता है, माँ बाप भी बताने में गर्व करते कि मेरा लड़का अमेरिका में है, लेकिन जब माता बीमार पड़ती है तो लड़के को टाइम नहीं आने के लिए यहाँ पर, बोला भैया चिंता मत करो जितना चाहे उतना पैसा भेज दूंगा, लेकिन बेटा आप मैं नहीं आ पाऊंगा मेरे को छुट्टी नहीं है। तो जिस पर आपने गर्व किया था कि मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ता है, वो लगेगा मैंने क्यों भेजा उसको अमेरिका को, मैं मर रहा हूँ जानलेवा बीमारी से, और मेरा बच्चा खाली पैसे ही और पैसे ही और पैसे भेज रहा है, तो पैसे से क्या करना है, मम्मी चिंता मत करना बिगेस्ट डॉक्टर जो है उसको दिखाना, बेस्ट डॉक्टर को कहाँ जाना है बताओ, पैसे भेज दूंगा, लेकिन आप नहीं आओगे, नहीं नहीं आ पाऊंगा मैं, मेरे बच्चे का एग्जाम है, मेरे वाइफ का जॉब है, इधर छुट्टी नहीं मिल रही है, ऑफिस के काम है बहुत सारे, और पूछते भी है अभी अर्जेंट है क्या ना, डॉक्टर को पूछते हैं अर्जेंट है क्या, मतलब बचेगी ना, छुट्टी देने के 15 दिन के बाद में आप चलेगा ना, ये सब मैंने आंखों से देखा है, मैं अभी ऐसे थियोरी के लिए जोक नहीं कर रहा हूँ, ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ है, हुई घटना है। इसके ऊपर क्या नुकसान होता है हमको पता ही नहीं, हमारा चैत्र प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा नया साल संवत्सर क्या है पता ही नहीं, चैत्र नवरात्रि क्या है पता नहीं, अश्विन नवरात्रि क्या है पता नहीं, दशहरा क्या है पता नहीं, और बाकी तो वैष्णव राधा कुंड अपीयरेंस तो भूल ही जाओ, तो आपको PhD हो गए आप, अगर राधा कुंड अपीयरेंस मालूम है तो सब लोग PhD हो गए, लेकिन कॉमन चीज भी पता नहीं लोगों को, सब लोगों को पता है दिवाली मतलब एंजॉय, बहुत लंबी छुट्टी, वीकेंड, बाहर जाने का, घूमने का, खाना पीना रहना, नया कपड़ा पहनने का, और इतना ही पता है, मतलब मेरे लिए एंजॉयमेंट क्या है तो दिवाली अच्छा है, गणपति अच्छा क्यों है, अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निर्णय लिया है कि गणपति मतलब महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में 5 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए लगातार कंटिन्यूस, तो सब लोग खुश, लॉन्ग वेकेशन, कभी चले जाओ घूमने के लिए, सब लोग अपना वेकेशन वो गणपति में प्लान करते हैं, गणपति रहेगा बाजू में, गणपति के लिए कोई पूजा वूजा कोई का स्थान नहीं है, हमको बाहर जाना है, गणपति की छुट्टी है, दीपावली की छुट्टी है, क्रिसमस की छुट्टी है, वो जीसस क्राइस्ट से कोई मतलब नहीं है, छुट्टी मिलना चाहिए, एंजॉयमेंट करने को मिलना चाहिए। सारा के जो फोकस है ना हमारा, वो पैसा और भोग दो चीज के पीछे है। पैसा का मन उसी में लगा रहता है, कितना भी मिलेगा तो संतुष्टि होती नहीं है, और वो पैसे के द्वारा एंजॉयमेंट कैसे करना है, इतना ही लोगों का ध्यान रहता है। लेकिन ये सब के पीछे हमको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितनी पुरातन संस्कृति है। सारी हमारी संस्कृति जो है ना, वो सनातन धर्म पर आधारित है, और ये सनातन धर्म हमारे जीवन का मूल है। वो एक जमाना था जहां पर ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा आदर मिलता था, जो सबसे गरीब हुआ करते थे। बोलो, सबसे गरीब हुआ करते थे ब्राह्मण, लेकिन सब लोग, धनी लोग उनके चरण छूते थे, क्योंकि वो विद्या संपन्न है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। वो गाइड करेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सब प्रकार का गाइडेंस देंगे आपको। अभी गाइडेंस देने को लोग सोचते हैं कि अरे क्या पैसे दे रहा हूँ मैं, चलो गाइडेंस दे दो, कुंडली देखो मेरी, कौन सा मुहूर्त अच्छा बता दो, आई एम गिविंग मनी। अरे पंडित जी कितना लंबा शादी कर रहे हो, तो मेहमान लोगों को बाहर जाना है, फ्लाइट पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, जल्दी जल्दी कितना टाइम लगेगा आपके? बोला अभी तो एक घंटा लगेगा। एक घंटा? 15 मिनट में फिनिश करो, 15 मिनट में ख़त्म करो विधि आप, क्योंकि क्या सोचते हो, अरे पैसे दे रहा हूँ उसको मैं, आई एम गिविंग दक्षिणा टू हिम, यस टू लिसन टू मी। ये कलयुग का सबसे पतित भाव है। ब्राह्मण के साथ सामने सब लोग ऐसे रहना चाहिए, महाराज विनती करना चाहिए, कुछ जल्दी हो सकता है क्या कुछ? तो ब्राह्मण को लगता है ठीक है ना, अभी क्या है, यजमान को ही अपने विधि की पड़ी नहीं है तो मेरी थोड़ी शादी हो रही है, उसके बेटे की शादी हो रही है। तो फिर क्या करता है वो, फास्ट फॉरवर्ड, आपको पता नहीं क्या बोल रहा है, कौन सा विधि स्किप किया उसने, बस इनको खाना खिलाना है, खिलाओ बस, देखो 12 बजे फिनिश किया मैंने, आपने कहा तो फिनिश किया। ऐसा है सब। तो ये जो हमारा संस्कृति है ना, वो बहुत महान संस्कृति है। इसलिए आपके घर में बच्चे हैं या आपके घर में बच्चे नहीं है, हर उत्सव पे आप अपने घर के बैठ के चर्चा करो कि आज का उत्सव क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, एंड शेयर करो। बच्चे को भी शेयर करने का मौका दो, माता को भी शेयर करने का मौका दो, और डिस्कस करो, भले 5 मिनट का डिस्कशन हो, लेकिन सब लोगों को पता होना चाहिए कि आज हम लोग कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं। कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो, जैसे हम लोग साउथ इंडियन हैं, हाँ उडुपी से हैं, तो आज के दिन हमारे बहुत लोगों के घर पर बच्चों को वो धोती पहनाते हैं, साउथ इंडियन धोती पहनाते हैं, और सब लोगों को केले के पत्ते पर खिलाते हैं, और ट्रेडिशनल फूड बनाते हैं, वो मंचूरियन और चाव चाव नहीं बनाते उस दिन, पूरा वो गांव के ट्रेडिशनल फूड जो कोकोनट ऑयल में बनते हैं वो बढ़िया से बनाते हैं, सिस्टमेटिक, जो हर एक उत्सव का एक मेन्यू होता है। कोई वेस्टर्न कंट्री में ऐसा है क्या? क्या बताऊँ आपको, हमारा जो देश है ना, वो इतना महान है कि हमारा मेन्यू तो कम से कम 30 प्रकार का मेन मेन्यू इंडिया में है, जितने राज्य है 26 प्रकार के उसमें उतने मेन्यू हैं, और उसमें भी हर फेस्टिवल का डिफरेंट मेन्यू है। जैसे गणपति मतलब पातोड़े बनाना है और मोदक बनाना है, ऐसा एक सिस्टम है। नवरात्रि को क्या बनाना है, दीपावली में क्या होना चाहिए, हर चीज़ का एक मेन्यू है। वो सेम पंजाबी में सेम पंजाबी, रोज़ पंजाबी पनीर नहीं खाना है, वो फेस्टिवल का मेन्यू अलग होता है। साउथ इंडियन में भी वही कोकोनट और चावल और इडली नहीं खाना है, वो हर मेन्यू अलग अलग है फेस्टिवल में। वो जब बनता है तो पता है कि आज गणपति है, मोदक बना मतलब गणपति का उत्सव है। तो मैं बताता हूँ आपको कि धन का अमाप संग्रह होने पर भी आदमी कैसा दरिद्र है उसका आप सोच सकते हो। मतलब व्यक्ति दरिद्र नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत मशहूर, कम से कम 28 देश में उनकी कंपनी है और सब जोरदार चल रहा है, हजारों एम्प्लॉयज़ हैं और वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है। वो हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तो हमने उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा था, तो सब नाड़ी वाड़ी देख के सब उसको बताया आपके शरीर में वात बहुत हो गया है, वायु, इसलिए आपका शरीर बहुत फूक रहा है और शक्ति नहीं है, दर्द हो रहा है सब जगह पे, तो क्या करना चाहिए? तो पहले पूछा आप लोग अब क्या खाते हो? तभी इतना धनी व्यक्ति है ना, इतना करोड़पति मिलियनेयर व्यक्ति है, कुछ भी खा सकते हो, वो चाहिए तो इंडिया से मंगा सकता है, इतना धन है। क्या खाते हैं? मॉर्निंग में ब्रेड और बनाना सैंडविच, आफ्टरनून में ब्रेड और टोमेटो ऑमलेट सैंडविच, और शाम को भी ब्रेड और कुछ सैंडविच। तीन टाइम पे सैंडविच, ब्रेड फर्मेंट किया हुआ ब्रेड, ब्रेड एक में बनाना, एक में टोमेटो ऑमलेट, एक में और कुछ फल, दैट्स इट। हर साथ में सॉस और रेड सॉस और वो डालना है। मतलब अभी कोई भोजन है, इतना धन है, लेकिन तीन टाइम पे सैंडविच ही खाता है आदमी, ब्रेड का ही कुछ ना कुछ, तो बर्गर खाता है तो ब्रेड सैंडविच खाता है तो कुछ नहीं खाता है। तो बताना पड़ा, पहले आपको फर्मेंटेड ब्रेड छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये बीमारी ठीक नहीं होगा। तो क्या करना होगा? रोटी खाना पड़ेगा। रोटी क्या होती है पता ही नहीं, व्हाट इज रोटी, आई डोंट नो। तो समझाए हम लोग, वो डो होता है ऐसा, हम लोग बनाते हैं उसको, फिर रोल करते हैं उसको, रोस्ट करते हैं, फिर पकाते हैं, अच्छा फिर खिलाया बना के, ओ ये रोटी होती है, इस इंडियन ब्रेड, ठीक है इंडियन ब्रेड, इंडियन ब्रेड। तो टेल योर वाइफ टू मेक, माय वाइफ डजंट नो हाउ टू मेक, शी विल नॉट लर्न ऑल्सो, हु टीचर। तो पूरा इंटरनेट सर्च करके वो एक ढूंढ के निकाला, रोटी की बहन टॉर्टिलोज, गेहूं का बना हुआ, एक मैदा का बना हुआ, एक गेहूं का बना हुआ, एक ऐसा बना हुआ, एक वैसा बना हुआ, एक 7 grains का, एक 5 grains का, एक 3 grains का, ऐसा ढूंढ के निकाला और वो शुरू किया। साथ में सब्जी नहीं, उसको बटर लगा के खाते हैं, कोई चटनी नाम की चीज़ नहीं है, कोई अचार नाम की चीज़ नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे भारत में कितना भी गरीब आदमी रहेगा ना, दाल चावल रोटी सब्जी इतना तो खाई गई। बहुत ज़्यादा गरीब होगा तो केवल दाल चावल खाएगा या तो रोटी सब्जी खाएगा, लेकिन खाएगा ज़रूर। भिखारी भी आप रास्ते पे देखो, आपको कभी बहुत कम भारत मुंबई में पड़ा पाव खाते, लेकिन बाकी सब जगह पे आपको चावल और दाल खाते हुए दिखाई पड़ेंगे, वो भी फ्रेश। ये सब बताना ज़रूरी है, आपको लगा कि मैं कथा बताने आया हूँ, कौन सी कथा बता रहे हैं। अभी मैं एक बार ना सऊदी अरब में 2 साल मैंने काम किया, 26 महीने मैंने मेरे हाथ से 2 टाइम खाना बनाया, बहुत फ्रेश एकदम, इडली डोसा जो भी है एवरीथिंग फुल्ली आई मेड। लोगों को बुलाया, उनको भी खिलाया, प्रोग्राम किया चुप चुप के सब कुछ, लेकिन खाना बहुत बढ़िया खिलाया। तो मेरे एक लेक्चर में आने वाले लोग थे, अच्छे धनी अमीर थे बहुत, सऊदी अरब में 20 साल से रह रहे हैं, करोड़पति। तो वो पत्नी वेकेशन पर जा रही थी, तो उसने क्या किया होगा, 30 सब्जियाँ बनाई, 30 सब्जियाँ प्लास्टिक कंटेनर में रखी और डीप फ्रीज में चार डाल दिया उसको। बोला आपको रेज एक डब्बा निकालना है, नाम लिखा है, ये भिंडी का सब्जी, ये बैंगन का सब्जी, ये तौंडली का सब्जी, सब नाम लिखे रखा है, इंडियन ट्रेडिशनल नाम, उसको निकालना है और ओवन में डालना है, उसको हीट करना है और बाहर से टॉर्टिलोज खुबूस लाना है और खाना है। 30 दिन की बासी सब्जी उसने 30 दिन खाई, और ये तो अच्छे घराने के, इंडियन साउथ इंडियन ट्रेडिशनल अपना बना के कम से कम वाइफ गई हुई है। बाकी लोग क्या करते हैं, रेडीमेड कुक्ड टिंड ग्रेन्स, रेडीमेड कुक्ड टिंड वेजिटेबल्स, 50 दिनों की बुरा नहीं, उसमें फंगस विंगस सब प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है, उसको आके धोना पड़ता है बहुत, क्योंकि रेडीमेड कुक्ड है ना, वो अजीब सा स्वाद लगता है उसको बहुत, चने भी उसके अंदर है, सब कुछ है उसके अंदर, सब्जी भी, सब एवरीथिंग इज देयर, खाली वो ड्रेन करना है उसको और सॉस मिक्स करना है और खाना है उसको, सॉस डालना है उसके ऊपर, ओवन में रखना है, हीट करना है। ओवन भी कैसा, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन का मतलब होता है कि अन्न पदार्थ में कितने सत्व है आपके पोषण के लिए, वो सब डिस्ट्रॉय करके आपको देना। एक तो पहले से बासी खाना, पुराना कब का पका हुआ है, नोबडी नोज, ऊपर से सॉस भी ऐसा फिर थोड़ा सा फ्रेश होता है, वो पुराना आइटम वो डाल के उसको माइक्रोवेव में घुमाना है, 7 मिनट में ऐसा गर्म होके आएगा, मुंह जलेगा आपका, लेकिन सारा न्यूट्रिएंट्स जलाकर आपको 0 न्यूट्रिएंट वैल्यू करके आपको दे देगा वो। और ये अमीरता के लक्षण है कि हमारे पास 7 मिनट में राइस बनता है और 10 मिनट में दाल बनती है, हमारे पास सॉस है, हमारे पास चीज़ है, हमारे पास ब्रेड है, हमारे पास फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, फ्रोजन रेडीमेड वेजिटेबल बनाए हुए हैं, सब कुछ हमारे पास है, सब मार्केट में आके पिकअप करके पूरा ट्रॉली भर के लेके आते हैं, पूरा डीप फ्रिज में यहाँ वहाँ भर कर रख देते हैं, एक एक निकालते हैं, उतर के ओवन में चलाते हैं और खाते हैं। कैसे शक्ति आएगा बताओ, कौन सा कल्चर है ये? हमारे यहाँ पे जित गरीब से गरीब आदमी रहेगा तो रोज़ फ्रेश गरम हाथ से बनाई रोटी और फ्रेश गरम, हो सकता है रोज़ आलू खाएगा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो गरम रोज़ खाएगा। रास्ते में भिखारी भी तवा जला के गरम गरम खाना खाते हैं, भीख मंगा हुआ खाना लेके भी गरम खाना खाते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी समृद्धि किस में है। तो एक समृद्धि हमारी, आप अभी आप जीव में आए हो, एक समृद्धि है फ्रेश हवा और फ्रेश पानी की। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर फ्रेश हवा और फ्रेश पानी मिलता है तो आप बहुत धनी हो। दूसरा ऐश्वर्य है कि आपका परिवार आपके साथ में है, एटलीस्ट इमोशन में साथ में है, और फिजिकल होना तो और भाग्यवान नहीं है। आपके बच्चे आपके साथ में, आपकी बीवी बच्चे एक्सटेंड फैमिली भाई बहन सब साथ में रहते हैं और रेगुलरली मिलते रहते हैं, हाँ ये हमारा भाग्य है, ऐश्वर्य है, समृद्धि है, रिचनेस है। और तीसरा हमारे काम की जगह जो है वो हमारे घर के बहुत पास में है। तो मुंबई में शहरों में क्या होता है, पूरी ज़िंदगी तो काम पे जाने में और आने में ख़त्म होती है। कितने लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में सुबह 6:30 को निकलते हैं घर पे, वो भी उसके पहले एक घंटा उठना पड़ता है ना तैयारी करके, कुछ खाना पीना चाहे चाय पीना है, 6:30 को निकलते हैं, रात को 11:30 बजे घर लौट के आते हैं। वो भी कैसा काम बंद करना पड़ा, मतलब निकलना है, 10:30 हो गया है, छोड़ता ही नहीं बॉस, 10:30 निकला, 11:30 घर पे आ गए, 11:30 को डिनर खाएगा, उसके बाद में टीवी देखेगा क्योंकि दिमाग का प्रेशर उसको उतारना है, 1 बजे सोएगा, फिर 5:30 बजे उठेगा, फिर भागेगा, 15 घंटा काम करेगा गधे जैसा। और जो 2 लाख 3 लाख 5 लाख की सैलरी है उसको एंजॉय करने को भी टाइम नहीं है, एक आइसक्रीम खाने को भी टाइम नहीं है। सो दिस इज नॉट रिचनेस। और ऊपर से ये सब जो शेड्यूल है इससे जो बीमार पड़ेगा उसका इलाज करेगा, बैक एक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर यंग एज में, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी आपको विचार करना है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। इसमें छुट्टी आई मतलब क्या, दिवाली का अच्छा सोने को मिलेगा, सैटरडे संडे केवल सो रहा है। ऐसे जिंदगी में गणपति कभी आए और कभी गए, देवी कभी आई और कभी गई, दशहरे में क्या हुआ, हु नोज, इसको इधर टाइम नहीं विचार करने के लिए। जब भी उठता है तो बच्चे सोए रहते हैं, रात को आता है तो बच्चे सोए रहते हैं, वीकेंड को ये सोया रहता है, बच्चे जगे रहते हैं, बिकॉज ही इज मेकिंग स्लीप। तो वीकेंड में बच्चों को पापा खेलने चलो, अरे कहाँ खेलो भैया, मेरे को 7 दिन का नींद पूरा करना है अभी, फिर मॉल में ले चलो, उधर कुछ खरीदी करो, नो टाइम, नो क्वालिटी टाइम। इसको कहते हैं पावर्टी। जब आपको आपके समय फैमिली के साथ में बैठकर कुछ समय कम से कम प्रेम से आदान प्रदान करने का फ्रीडम नहीं है तो हम लोग बहुत गरीब हैं, वी आर वेरी पुअर, वी आर नॉट रिच, पैसा बहुत है लेकिन इज यूजलेस। माँ के साथ 2 मिनट बैठने को टाइम नहीं, बच्चे के साथ बैठने को टाइम नहीं, वाइफ के साथ बैठने को टाइम नहीं, उसको भी आपके साथ बैठने को टाइम नहीं, उसकी कुछ पार्टी चल रही है, उसका कुछ चल रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है। इसके वजह से फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि 4 कमरे का घर है, 2 नीचे 2 ऊपर, पूरा डुप्लेक्स हाउस है, 4 कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 अपने अपने टीवी में 4 टीवी देख रहे हैं, और सबको मैसेज करना पड़ता है व्हाट्सएप पे, टाइम फॉर डिनर कम डाउन, बोलते आई विल नॉट कम, माई सीरियल इज गोइंग ऑन। तो फिर एक आदमी आएगा खा के चला जाएगा, दूसरा आएगा खा के चला जाएगा, तीसरा आएगा खा के चला जाएगा, और वो खाना लेट आ गया ठंडा रहेगा, वो भी वापस डालेगा ओवन के अंदर, वापस निकालेगा खाएगा, वो भी ऐसा डालेगा, इट्स कॉल्ड एज ग्रैब अ बाइट, हाँ ही इज नॉट ईटिंग, ही इज ग्रैबिंग अ बाइट लाइक एनिमल। वी आर ऑनरिंग प्रसाद देन ईटिंग प्रसाद and somebody is grabbing a bite. So we have to change all these things. और फिर बाद में सोचते हैं, बड़ा सेमिनार करते हैं, शुद्ध हवा का मतलब क्या है, शुद्ध पानी का मतलब क्या है, लेकिन जिंदगी भर किया क्या, फिर अभी शुद्ध पानी ढूंढ रहे हैं, शुद्ध पानी किधर है, शुद्ध हवा किधर है, क्योंकि पैसे से शुद्ध हवा नहीं मिलती ना अल्टीमेटली, यू नीड टू लिव नेचुरल लाइफ। सबसे बड़ा ऐश्वर्य कौन सा है, 9:30 बजे सोना, 4 बजे उठना, स्नान करना, भगवान का नाम लेना 1-2 घंटा, शास्त्र पढ़ना, फिर सबके साथ मिलकर ब्रेकफास्ट लेना, फिर काम पे जाना, सबके साथ बात करना अच्छी तरह से, फिर काम पे टाइम पे काम करना, शाम को आना, फिर वापस परिवार को मिलना, साथ में डिनर लेना, दिन में क्या हुआ उसको चर्चा करना, सबकी सुनना, बच्चे ने क्या दिन में किया, उसका एक्सपीरियंस क्या है, पापा का एक्सपीरियंस क्या है, मम्मी का कुछ एक्सपीरियंस है, वो सब शेयर करना है। और शाम को सोने के पहले फिर भगवान की एक कथा घर पे होनी चाहिए। पुराने जमाने में मैं जब बच्चा था ना, हर घर पे शाम को रामायण पढ़ते थे, और गांव में खास करके खेती से आते थे, हाथ पांव धोते थे, सब लोग बैठ जाते थे, बुजुर्ग आदमी जो है ग्रैंडफादर रामायण खोलेगा, उस पर कुछ चर्चा करेगा, उसके बाद घर के मंदिर की आरती होगी, सब पड़ोस के जितने भी है सब आएंगे, आरती होगी, प्रसाद पाएंगे, सो जाएंगे। दिस इज रिचनेस। फिर 73 में क्या हुआ, माता जी को पता होगा, 1973 में क्या हुआ, टेलीविजन आया, टेलीविजन, दूरदर्शन एक ही चैनल 6:30 PM को खुलता था, 10 o'clock को बंद होता था। तो शाम को ये जो इडियट बॉक्स घर पे आया, उसके सामने बैठने के लिए बुजुर्ग आदमी ने भी रामायण छोड़ दिया, और वो भी बैठ के देख रहा है, क्या किलबिल, फूल खिले, गुलशन गुलशन, छाया गीत, गुरुवार को, शनिवार को पिक्चर, रविवार को हिंदी पिक्चर, शनिवार को लोकल लैंग्वेज पिक्चर, जहाँ पर भी स्टेट में चल रहे, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, क्रिकेट मैच बीच में, वो दिन भर 9:30 to 5:30। तो क्या हो गया उसमें, अपना जो बहुत बड़ा संस्कृति था रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, भागवत को शाम को बैठकर पढ़ना परिवार के साथ, वो समाप्त हो गया। दादाजी भी बैठा है मैच देखने के लिए, वो बोल रहा है वो मारता क्यों नहीं, अरे मारना चाहिए उसको, चार मारना चाहिए, वो क्या कर रहा है, टुकड़ों को खेल रहा है। जो रामायण के बारे में बात करते थे, बोल रहे कि गावस्कर अभी सेंचुरी क्यों नहीं मार रहे हैं, और अभी के लोग तेंदुलकर क्यों नहीं मार रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, बोले कोहली क्यों नहीं मार रहे हैं, कंसेप्ट वही है। फिर उसके बाद में एक चैनल का दो चैनल हो गया, फिर दो के तीन हो गए, फिर पाँच हो गए, 500,000 चैनल हो गए। अभी बोल रहे हैं मम्मी मुझे वो देखना है, तो मम्मी बोल रहे हैं मुझे वो देखना है, मुझे रेसिपी देखना है, तो क्रिकेट मैच देखना है, उसको फुटबॉल देखना है, उसको और कोई वॉर देखना है, रशिया यूक्रेन में वॉर में क्या चल रहा है वो मुझे देखना है। कंटिन्यूअस, देर इज अ कंटिन्यूअस वीडियो ऑन यूट्यूब, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअस कई दिनों से चल रहा है, लाइव वॉर दिखा रहे हैं आपको, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग फाइनेंस चैनल निकाल के बैठने, पैसे का क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में, कंटिन्यूअस वो चल रहा है, बच्चे लोग कार्टून में बैठे हुए हैं, माता पिता और कुछ देख रहे हैं, सीरियल में बैठे हुए हैं, ट्रायंगुलर सीरीज, ये सीरीज वो सीरीज चल रहा है, और इससे क्या हो रहा है, सब लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, सब लोग चिप्स खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, फ्राइड सॉल्टी खाना खा रहे हैं, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर सब बढ़ रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, सबके पेट आगे आ रहे हैं, घंटों में उठने के लिए दिल दर्द हो रहा है, कोई वॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये पुअर लाइफ है, और हम लोग इस पूरे लाइफ को बदल सकते हैं, इसके लिए कल्चर की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और एक बार आपने कल्चर के बारे में चर्चा शुरू किया ना, आपको घर में टाइम ही कम पड़ेगा, अरे पापा स्टोरी बताई नहीं आपने, आधी छोड़ के चले गए कल, अभी बुरा करो उसको स्टोरी, सब बच्चे आपको बताएंगे, पापा आपने तो पुतना को मारने के पहले कथा बंद कर दिया, वो आगे क्या हुआ, कैसे मरी पुतना, उसके बाद में कैसा हुआ दाह संस्कार उसका, दिस काइंड ऑफ यू नो क्यूरियोसिटी इज रिचनेस। नहीं तो फिर सेंचुरी पूरा हुआ क्या, हो गया रात को मैं, उसके बाद क्या हुआ, आउट हो गया वो, 92 में आउट हो गया वो, सेंचुरी पूरा नहीं हुआ, बाद में क्या हुआ, इंडिया हार गई, ठीक है, अरे हार गई क्या, अरे यार ऐसा क्यों हार गई, वो 50 साल पहले भी इंडिया हारी थी, बीच में जीत गई थी, बीच में हार गई थी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है उसका, आपका पगार बढ़ रहा है, तनख्वाह बढ़ रही है, आप नींद छोड़ के उसको देख रहे हो, हेल्थ बिगाड़ रहे हो, और केवल जो 11 और दो चार मिलके मैनेजर जो 50 लोग है वही पैसा कमाते हैं, बाकी सब लोग बैठ के पैसा गंवाते हैं, नींद भी गंवाते हैं, हेल्थ भी गंवाते हैं, सब कुछ गंवाते हैं। फिर बीच में एक अच्छा समय आया, 1975-77 रामायण शुरू हुआ सीरियल, उसके समय पे जो सांस्कृतिक रिवाइवल हो गया ना, बहुत बढ़िया हुआ, सब रास्ते बंद, रास्ता सुनसान, रास्ते में कोई मार्केट में दुकान में कोई, सब बंद, शटर डाउन, और आज राम रावण को मारने वाले, अरे आज भी रामायण सागर ने मारा नहीं उसको, भी अगले साल भी दिखाएगा वो स्लो, लेकिन फिर भी लोग अटके हुए थे उसके ऊपर। और भारतवर्ष में संस्कृति की जो उन्नति हुई ना उस समय पे, अभी भी चल रही है, वो तो कई साल चला रिकॉर्ड ब्रेक, उसके बाद महाभारत शुरू हुआ बीआर चोपड़ा का, वो भी हमारे मेडिकल कॉलेज में तभी से चालू है, हमारा मेडिकल नहीं 11th-12th में, फिर मेडिकल में, फिर आगे भी चलता रहा वो महाभारत का, बहुत बढ़िया, सबको पता तो चला कि भाई अर्जुन कुंती का लगता कौन है, हाँ बहन है कि पुत्र है कि क्या भाई है क्या मालूम, कि पति है, या रावण और राम एक साथ थे कि कृष्ण रावण का युद्ध हुआ था, यहाँ से हमारा नॉलेज शुरू होता है। हाँ अब IIT के विद्यार्थी को पूछो कि रावण कुंभकर्ण कौन थे? बोले पता नहीं, होगे कोई, आई डोंट नो। कम से कम उसका पूरा एटलीस्ट बेसिक फाउंडेशन पता चला, भाई कुंती के पुत्र पांडव है, गांधारी के पुत्र कौरव है, धृतराष्ट्र उनका अंधा पुत्र था, भीष्मदेव उनके पितामह थे। ये बेसिक फंडामेंटल भी लोगों को पता नहीं था, लेकिन वो बी आर चोपड़ा और रामानंद सागर ने बहुत बड़ा धर्म का कार्य किया, पूरे भारतवर्ष में एक जागृति फैला दी राम और कृष्ण के बारे में। इसीलिए आज भी, आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है ना, हर फ्राइडे शाम को बाद में संडे इवनिंग तक आप किसी भी धाम में जाइए, पंडरपुर जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, नासिक जाइए, किधर भी जाइए, सब फुल रहता है, रूम फुल, गर्दी फुल, दर्शन फुल, मंदिर में जगह नहीं है, प्रचंड। अभी कार्तिक में तो इतना धुआंधार भीड़ है अभी, वो सब रामायण महाभारत का जो प्रचार हुआ था ना, धर्म की उन्नति हुई थी उसके वजह से है। और अभी तो कार्तिक चल रहा है, भीड़ है बहुत, लेकिन आप किसी भी वीकेंड में जाइए, ऑफ सीजन जाइए, कोई उत्सव नहीं, फेस्टिवल नहीं, कुछ नहीं, सैटरडे संडे फुल, उडुपी जाओ, नासिक जाओ, मेलुकोटे जाओ, हम्पी जाओ, एकदम अननोन भी जगह पे जाओ, उधर भी भीड़ है। और दीपावली में और क्रिसमस में जाओगे, बच्चे लोग 4 बजे लाइन में खड़े हैं, स्कूल के बच्चे, 4 o'clock इन लाइन ऑफ उडुपी, 2 hours नो दर्शन, ओनली चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन द क्यू। ऑल ग्रेटफुलनेस टू रामानंद राय एंड उन्हें क्या नाम, रामानंद सागर एंड बी आर चोपड़ा। जरूरी है बहुत, स्पिरिचुअल रेनेसांस, धार्मिक जागृति बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं, मेरा एक कर्तव्य समझता हूँ कि हमारे संस्कृति के बारे में लोगों को पहचान देना, बिगिनिंग फ्रॉम टचिंग द फीट ऑफ पेरेंट्स, पिताजी माताजी के चरण छूना, यहाँ से आरंभ होता है, और वो करना चाहिए। वो बताएंगे तो हम लोग बचेंगे, न तो हमारी भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी। हमारी संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, आपको बताता हूँ मैं, कितने भारत वर्ल्ड के बहुत बहुत सारे देश हिंदू राष्ट्र थे, लेकिन यवनों ने और क्रिश्चियन लोगों ने उसको आक्रमण करके किसी को क्रिश्चियन बना दिया राज्य, या किसी को मुसलमान बना दिया। ये पर्शिया जो है, इजिप्त है, ईरान है, सब इंडियन कंट्रीज है, उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया, लेकिन भारतवर्ष को किसी ने कन्वर्ट नहीं किया आज तक, क्योंकि भारतवर्ष में ये संस्कृति इतनी गहराई में घुसी हुई है कि लोग ऐसे इधर उधर नंबर में कन्वर्ट होंगे, लेकिन देश और राज्य को बहुत मुश्किल है करना। और अभी धीरे धीरे वो भी हो रहा है, क्योंकि उधर भी अटैक हो रहा है। क्यों अटैक हो रहा है? क्योंकि हम लोग हमारी संस्कृति के बारे में जागरूक नहीं है। आप कोई आपके संस्कृति के बारे में पढ़ी नहीं है तो उनको क्यों पढ़ी होगी? औरत लोग बिंदी नहीं लगाते हैं, सिंदूर नहीं लगाते हैं, शादीशुदा औरत मंगलसूत्र नहीं पहनती है, आदमी को धोती पहनने बहुत कष्ट है, वो जीन पैंट पहनता है, टी शर्ट पहन के घूमता है। तो फिर उन लोगों को क्या पड़ी है कि आपको, आप कुमकुम लगाएं? आपको ही हमारे संस्कृति का अभिमान नहीं है तो दूसरे को क्यों होगा? इस तरह से धीरे धीरे हमारी संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी और हमारे देश को सुलेमान होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ये मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको विनती करता हूँ सब लोगों को, जरूर आप घर पे उत्सव के दिन चर्चा कीजिए, आज का उत्सव का महत्व क्या है। पता नहीं है तो फोन करके पूछो और पता करो, टूटा फूटा नॉलेज क्यों ना हो, डिस्कस करो घर पे। एटलीस्ट एक एनवायरनमेंट तैयार करो जिसमें लोग प्रश्न पूछेंगे, मम्मी क्या है ये, मुझे पता नहीं बेटा, मैं कल बताऊंगी। कम से कम एक जिज्ञासा तो उत्पन्न किया आपने कि आज भाई दीपावली था, क्या मतलब है उसका। तो मैं आज आपको नरक चतुर्दशी के बारे में कहानी बताऊंगा। ऐसा सुनो आप कि आपको दूसरे को बताने के लिए सब याद रहना चाहिए। पर्पज इज टू लिसन एंड टेल अदर्स एग्जैक्टली रिपीटेटिवली प्रॉपरली, और उसको भी बोलना है और 4 लोगों को बोलो। इस तरह से चेन बनेगा ना तो आपका नॉलेज सबके पास स्प्रेड हो जाएगा। तो नरक चतुर्दशी यानी नरक असुर, नरकासुर, इसका इस दिन वध हुआ था। हाँ, और धनत्रयोदशी के दिन धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन, पृथ्वी भाई देखो, ये धन्वंतरी भगवान कौन थे? तुरंत प्रश्न आएगा ना, क्या किया उन्होंने, तो पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी ना। आपको पता है, आधी पता होगी, लेकिन आप प्रश्न पूछेंगे तो आगे पूरी पता हो जाएगी, जिज्ञासा होगी तो सब पता चलेगा। अभी आपको ब्लैक सूट कहाँ मिलता है, अच्छा लग रहा है, तो फिर आप पता करेंगे ये दुकान से लाया था, वो दुकान में, सोमवार को बंद रहता है, रविवार को जाना, अभी सेल लग रहा है ले लेना, है ना, देखा, प्रेरणा हुई, पूछा, उत्तर मिला, फिर खरीदी किया। वैसे ही आपने बोला कि धनवंती भगवान कौन होते हैं, तो उसके आगे दास्तान शुरू हो जाएगी पूरी, कि समुद्र मंथन कभी हुआ था, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मिल्क ओशन का मंथन किया था, उसमें 14 रत्नों का निर्माण हुआ था, उसमें पहले विश्व उत्पन्न हुआ था, फिर 14 रत्नों का निर्माण हुआ, उसमें 1 रत्न लक्ष्मी थी, उसने अजीत भगवान के साथ विवाह किया, उसके एंड में भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के रूप में समुद्र से अवतार लिया, उनके हाथ में अमृत का कलश था। फिर वो अमृत का कलश का क्या हुआ, फिर देवताओं में और भगवान में, भगवान के देवताओं में और असुरों में झगड़ा हुआ, फिर गरुड़ जी उसको लेकर भागे, फिर देवता उसके पीछे भागे और राक्षस भी पीछे भागे, फिर मोहिनी का अवतार हुआ, फिर मोहिनी ने अवतार लेकर देवताओं को उल्लू बनाकर, सॉरी राक्षसों को उल्लू बनाकर देवताओं को अमृत पिलाया, फिर उस पर जाकर राहु बैठ गया, फिर राहु का सर काट दिया मोहिनी ने चक्र से। ये सारी कथाएं उसमें प्रकट हो जाएगी। और तो धन्वंतरी भगवान कौन है, वो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पूज्य विग्रह हैं वो, उनके इसमें रहता है, इधर भी है ना धन्वंतरी भगवान, उनके एक हाथ में अमृत है, एक हाथ में क्या है, लीच, जड़ू है, जड़ू मतलब वो दूषित रक्तन वो पीती है, वो उधर लगाएंगे तो सारा पॉइजनस ब्लड निकाल देगी, वो पूरा बड़ी हो जाएगी और गिर जाएगी। धन्वंतरी भगवान में हाथ में थी वो, इसका मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये हुआ था धनत्रयोदश के दिन, तो सारे वैद्य डॉक्टर जो हैं वो धन्वंतरी भगवान का इस दिन पूजन करते हैं, क्योंकि डॉक्टर अपने नॉलेज से लोगों को ट्रीटमेंट देता है, लेकिन ठीक होना कि नहीं होना ये भगवान के हाथ में है। आई ट्रीट, ही हील्स, मैं दवा देता हूँ, ठीक वो करता है, क्योंकि वही दवा मैं सबको देता हूँ, 2 मर जाते हैं, 4 बच जाते हैं, मैं सबको तो सही में दवा दिया था सेम बीमारी के लिए, तो सही वैद्य कौन है जिसको भगवान के बारे में चेतना है, नॉलेज है, कि मैं दवा ज़रूर देता हूँ, नॉलेज के अनुसार डायग्नोस करता हूँ, दवा देता हूँ, लेकिन ठीक करना कि नहीं करना, कितना जल्दी ठीक करना और कितना देर से ठीक करना, ये भगवान तय करते हैं। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे हाथों में, बुद्धि में ऐसी शक्ति दो कि मेरा मरीज ठीक हो जाए। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरतिनाशनम। हे भगवान धन्वंतरी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए, स्वर्ग में जन्म नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे केवल यही चाहिए। कामये दुख तप्तानाम, दुख से तड़पने वाले लोग बहुत जल्द मेरे हाथों से दवा लेकर ठीक हो जाए। प्राणी नाम आरती नाशनम, प्राणियों का दुख नष्ट हो जाए, आरती जो है कष्ट पीड़ा नष्ट हो जाए, ये प्रार्थना करते हैं धन्वंतरी भगवान से, और उसी के नाम से ट्रीटमेंट लोगों को देते हैं। अभी कितने लोगों को पता है, नो वन नोस। फिर नरक चतुर्दशी, तो ये नरकासुर कौन था, अरे नरकासुर भगवान का ही पुत्र था, कितने लोगों को पता था बताओ, किसका पुत्र था वो, भूमि देवी का पुत्र था, पिताजी कौन थे उसके, वराह देव। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लात मारकर उसको कक्षा से दूर करके गर्भ उदक सागर में डाल दिया था, उस समय वराह देव का अवतार हुआ था ब्रह्मा जी के नाक से, अनुरूप में आए थे और विभू रूप धारण किया, पूरा व्याप्त कर लिया ब्रह्मांड का आकार। फिर पहले उन्होंने वो पृथ्वी जो गर्भोदय सागर में गिर पड़ी थी, वो वरा मतलब क्या, सुअर, बोर, हाँ वो ही गंदगी में प्रवेश कर सकता है, तो उसके अनुकूल शरीर लिया, उसके अनुकूल अवतार लिया, पानी में डाइव किया, तल में गए गर्भ उदक सागर में, वहाँ से पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उठाकर पानी के बाहर आए, आकाश में गए, जहाँ से लात मारकर फेंका था वहाँ जाके बिठा दिया कक्षा में, अपने ऑर्बिट में डाल दिया इन मोशन। तब तक वो पीछा कर रहा है, कौन, हिरण्याक्ष, जिसने लात मारकर पृथ्वी को पानी के नीचे फेंक दिया था। कितना बड़ा होगा वो समझो, पृथ्वी को अगर गेंद की तरह लात मार के पानी में डाल सकता है तो वो कितना बड़ा होगा सोचो आप। और हिरण्याक्ष और वराहदेव का युद्ध कहाँ हुआ था, कौन से प्लैनेट पे हुआ था, अरे सारे प्लैनेट उसके लिए गेंद की तरह थे, तो कहाँ से कौन से प्लैनेट पे खेल, आप अभी गेंद पे खड़ा होकर डांस कर सकते हो क्या, गेंद कितनी सी, आप कितने बड़े, वैसे युद्ध करना होगा, फाइट करना, तो गेंद में कैसे खड़े हो जाएंगे आप, तो स्पेस में युद्ध हुआ वराहदेव और भगवान का। तो जब ही वरादेव और पृथ्वी एक साथ में ऐसे जा रहे थे तो पृथ्वी देवी और वरादेव के संबंध से भौम असुर भौम का जन्म हुआ, पृथ्वी के पुत्र का जन्म हुआ। तो भूमि का पुत्र है इसलिए नाम क्या पड़ा? भौम। आगे जाकर बाणासुर से बैड एसोसिएशन, कुसंगति किया, इसलिए वो भौम असुर बन गया। पहले अच्छा था, वो भगवान का पुत्र था, भूमि देवी का, भगवान की पत्नी, भगवान और भगवान की पत्नी का पुत्र है वो, बहुत गौरवशाली माता पिता है उसके। लेकिन माता पिता अच्छे होने से और कुछ नहीं होता है, आपको अच्छा बनना है। माता पिता संत होंगे और बच्चा नंबर वन का गुंडा बन सकता है, स्मगलर बन सकता है, या माता पिता अच्छे नहीं होंगे तो फिर भी पुत्र महान बन सकता है। तो माता पिता केवल बड़े होंगे, मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? तुम तो दसवीं पास भी नहीं हो, वो तो फाइनेंस में 10 डिग्री ले चुका है। आपको अपना स्थान निर्माण करना है। तो वहाँ भगवान का पुत्र, तो उसका पहले से ही पोजिशन अच्छा था, लेकिन असुरों के साथ संग किया, बाणासुर जैसे बहुत लोगों का संग किया, इसलिए देवता बनने के बदले में असुर बन गया वो। अभी असुर बन गया मतलब क्या? गलती काम करेगा ना। अगर समझो आपके बाजू में असुर बैठा है तो आपको शांति से बैठने देगा नहीं, वो कुछ ना कुछ कष्ट देगा आपको। तो दुनिया में रहेगा असुर तो दुनिया के लोगों को कष्ट देगा। तो उसने क्या किया, क्या नाम उसका? भौमासुर। एक और नाम है नरकासुर। उसने ना 16,000, अभी ये वरादेव कभी हुए? सत्ययुग में। तो भौमासुर का जन्म कभी हुआ? सत्ययुग में। वो तो इतना लाइफ है उसको सत्ययुग का पूरा, 1728,000, त्रेता का 1296,000 और द्वापर का 864,000, इतना साल वो जी रहा है। अभी कृष्ण का समय आया है और कृष्ण भी द्वारका में, पृथ्वी में, मथुरा में इधर लीला कर रहे हैं। उतने समय में उसने 16,100 अनमैरिड अविवाहित लड़कियों को पकड़ के किसी से, मतलब आपके घर पे आके छीन के किसी घर राज्य में, कुटुंब में, परिवार में जाकर जवान लड़कियों को पकड़ के छीन के कैद में बंद कर दिया था। क्योंकि उनको सबको मार कर एक दिन यज्ञ करना था, एक सबको बलि देकर एक प्रचंड शक्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने के हेतु वो लड़कियों को इकट्ठा कर रहा था। कितना माइंड रह गया देखो उनका, जस्ट सोचो, अविवाहित कन्याओं को एकत्र करके उसका यज्ञ में बलि देना है। क्यों? मुझे कुछ पावर चाहिए, आई डोंट केयर फॉर देयर लाइफ, नो, मैं उनको शरीर के लिए, जीवन के लिए कोई परवाह नहीं करता, उनकी शादी हुई नहीं हुई, खाना मिला नहीं मिला, आई डोंट केयर, मेरे को उनको मार के कुछ शक्ति प्राप्त करना है ताकि मैं अजय बन जाऊं। तो बीच में क्या हुआ, वो नरकासुर कहाँ रहता था? एनी आइडिया? आप कहाँ रहते हो? निगड़ी में रहते हो, है ना? कुछ एड्रेस है ना आपका? मेरा भी एड्रेस है, मेरा रोड का। तो नरकासुर का एड्रेस क्या था आज बताऊंगा, आगे आपको भूलना नहीं चाहिए। आसाम, उसका नाम था प्राग ज्योतिषपुर, स्क्रिप्चर का नाम प्राग ज्योतिषपुर है, और जरासंध का नाम क्या? मगध देश, और मगध मतलब बिहार आज का। गांधारी कहाँ की थी? कंदाहार, मतलब कंदाहार आज का नाम है, उस समय का नाम था गांधार, इसलिए गांधार देश के लड़के का नाम गांधारी, तो कांधार का कंदाहार हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान में उसका, अभी अफगानिस्तान ये अभी बना हुआ है, तभी तो आर्यों का देश था, भारतवर्ष था वो, एक्सटेंडेड इंडिया वॉज दैट, ब्रह्म देश। तो क्या हुआ? बर्मा, लेकिन है ब्रह्म देश, ओके। और मॉरिशिया मतलब क्या? मारीच को बाण मारकर जहां फेंक दिया राम ने और समुद्र में गिरा दिया, वो समुद्र जो है उसका नाम देश पड़ा मॉरिशियस। और पांडव लोग अपने शस्त्रों का अभ्यास करते थे और स्टोर भी करते थे, उसका नाम था अस्त्रालय। तभी क्या नाम हुआ? ऑस्ट्रेलिया। ऐसे बहुत लोगों का, बहुत देशों का नाम रिसर्च से बना हुआ है। तो एनीवेज, ये प्राग ज्योतिषपुर में अपना राज्य बनाकर वहां पर बड़े कैद खाने में 16,100 रानियों को, अपना लड़कियों को कैद कर कर रखा था। बीच में क्या हुआ, इसी नरकासुर ने इंद्र के, मेरे ख्याल से माँ का, अदिति का कुंडल चोरी किया। अभी अदिति का कुंडल थोड़ी क्यों गया, बाकी का क्यों गया? क्योंकि अदिति का कुंडल पूरे ब्रह्मांड में बहुत फेमस था, वेरी वेरी फेमस ऑपुलेंट। तो अदिति का भी देवता के, इन देवता के राजाओं के माँ का कर्ण कुंडल चुराया, इट्स अ बिग इवेंट। नेचुरली इंद्र ने कंप्लेंट किया भगवान के पास, अरे ऐसा ऐसा कंट्रोल ये राक्षस ने मेरे मदर का कुंडल चोरी कर लिया है। तो भगवान ने सोचा भी इसको सबक सिखाते हैं। तो भगवान सत्यभामा को लेकर निकले, और एक के पीछे कारण है। सत्यभामा को क्यों निकले? क्योंकि अभी हम जाएंगे नरकासुर को मारेंगे, उसका कवच कुंडल जो चुरा है वो ले लेंगे, और फिर स्वर्ग जाएंगे और इंद्र के माता का कुंडल लौटा देंगे। और आपको तो प्राजक्त का पेड़ चाहिए ही था, तो इंद्र के उधर नंदन वन में बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ से ही चुन लेना। तो दोनों काम हो जाए, आपका शहर भी हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, उसका कुंडल भी मिलेगा, आपका भी पेड़ मिलेगा, मल्टीपर्पज़ विजिट। तो सत्यभामा को लिया और पहले प्राग ज्योतिषपुर में उन्होंने हमला किया, और नरकासुर के साथ में ना बहुत भयंकर युद्ध हुआ भगवान का। अरे पढ़िए आप लोग, पढ़िए, भागवत में पूरा खजाना भरा हुआ है इन कहानियों का। कितने सारे फेंस बनाए थे उसने, इलेक्ट्रिक बार्ब वायर, मैग्नेटिक बार्ब वायर, फिर सांप, फिर तंत्र मंत्र, ऐसे बहुत सारे कवच थे उसके अंदर, उसके राज्य में एंट्री मारने के लिए। पहले जल का खंदक था पूरा, नो रोड, ओनली वाटर इन बिटवीन, उसके बाद में इलेक्ट्रिक, उसके बाद में मैग्नेटिक, उसके बाद में तांत्रिक, उसके बाद में मांत्रिक, उसके बाद में एंट्री, फिर बाद में फिर मूर राक्षस, वो पहले अटैक करेगा कोई अंदर घुसेगा तो। इतना प्रोटेक्शन था वो, बहुत हाईली साइंटिफिक प्रोटेक्शन था उसका, लाइक वी हैव ना, और बटन दबाएगा तो पूरा दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा खुला, सीसीटीवी चालू, लाइट चालू, लाइट बंद, हाईटेक, इससे कई गुना हाईटेक था उस समय। भगवान ने सारा अपने गदा के साथ तोड़ दिया, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद नरकासुर के साथ युद्ध हुआ भगवान का, पहले मूर के साथ युद्ध हुआ, मूर डीमन, मूर को भगवान ने मारा, फिर नरकासुर को मारा, फिर सबसे पहले भगवान ना वो कैद खाने में गए, और कैद खाने में भगवान ने वो 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया उनको उनके कैद खाने से। फिर अदिति का कवच जो कुंडल था ना वो लिया, जहाँ पर रखा था उसको। इतने में क्या हुआ, सुभद्रा जी वहाँ पर बैठकर देख रही है हमारे पतिदेव कितना पराक्रम कर रहे हैं, आनंद ले रही है, कोई टेंशन नहीं उसको, मालूम है सब हमारे पिताजी पति भगवान है। अचानक वो 16,100 कन्याएं भगवान के सामने आई और बोली, भगवान बहुत धन्यवाद, आपने हमको बचाया, हम आपके बहुत ऋणी हैं, लेकिन आपने हमको बचाया, इसके बाद में हमारे सामने आत्महत्या करने के बिना कोई उपाय नहीं बचता है। बोले क्यों? अरे मैंने फ्री किया। वो कह रहे हैं कि हमारे संस्कृति में अगर अविवाहित लड़की अगर एक रात पिता के घर छोड़कर कहीं रही एक रात, तो उसको कोई घर पे लेता नहीं नंबर वन, और उसके बाद कोई विवाह भी नहीं करता है। कन्या अपना घर छोड़कर एक रात बाहर तब रहेगी जब उसका विवाह होगा, तब तक वो कहीं भी जाएगी शाम को अपने घर पे सोने के लिए आएगी। ये हमारा कल्चर था। अभी अभी तक हमारी पत्नी जब भी कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो रूल था 7 बजे के पहले घर पे आना है, क्योंकि 7 के आसपास मुंबई में कम से कम सूर्यास्त हो जाता है और अंधेरा होने की शुरुआत होती है। 7:30 को अंधेरा होता है जोर जोरदार, लेकिन 7 के आसपास सबको घर पे आना ही है। किधर भी जाओ, क्लास जाओ, घूमने जाओ, समुद्र में घूमने जाओ, चौपाटी जाओ, किधर भी जाओ, सेफ्टी मेजर था वो बहुत। अभी मैं देखता हूँ मीरा रोड के स्टेशन पर रात को 1:30 को यंग गर्ल विल गेट डाउन फ्रॉम ट्रेन एंड शी विल गो होम एट 2:00, क्योंकि वो IT में काम करती है, चर्च गेट में, उसका जॉब ही 11:30 को ख़त्म होता है, फिर वो ट्रेन पकड़कर, लास्ट ट्रेन पकड़कर 1:30 को उतरती है। और 1:30 को मीरा रोड में कम से कम 300 लोग स्टेशन पे उतरते हैं ट्रेन से, 1:30, 1:00, 2:00, लास्ट ट्रेन में भी पूरा 300-800 लोगों की भीड़ मीरा रोड में उतरती है, जो मीरा रोड में पहले 2 और 1 दिन में उतरते थे। रात को 2 बजे 300 लोग उतरते हैं, उसमें कई लड़कियां होती है, थकी हुई ऐसी बैग लेकर चल रही है, IT में काम कर रही है। तो बहुत लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को सिगरेट, बीड़ी, दारू, तंबाकू की आदत है, क्योंकि इतना स्ट्रेस लेना है। तो वो कह रहे हैं कि आप इन्होंने हमको कैद में रखकर कई रातों को हम लोग यहाँ पर रहते हैं, रह रहे हैं। तो हमारे माता पिता हमको लेंगे नहीं घर पे, तो हमारे लिए समाज में क्या स्थान है? आपने तो कैद कर बाहर तो कर दिया हमको, लेकिन जाएंगे इधर हम लोग, छप्पर कहाँ से लाएंगे हमारे सर पे ऊपर, देयर इज नो शेल्टर। तो वो समाज में कोई भी स्थितिहीन थे, वो उनको कोई पोजिशन ही नहीं था। तो लोगों को लगता है अरे क्या तुम्हारे भगवान, एक तो 8 बीवियां किया एक के बदले में, 8 में भी दिल नहीं भरा तो 16 और 100 को भी विवाह किया, कितना एंजॉयमेंट करना है उनको। उनको पता नहीं है कि 16 और 100 जो है वो समाज में स्थानहीन कन्याएं हो गई थी, वो आत्महत्या के योग्य हो गई थी। उन्होंने भगवान ने उनको अपना विवाह करके अपनी पत्नी का दर्जा दिया, उनको राजपत्नी बनाया, रानी बनाया, द्वारका में एक एक महल दिया उनको, एक एक कन्या को जो आत्महत्या करने के लायक थी उनको रानी बनाकर द्वारका में एक एक को एक एक महल दिया, 10 पुत्र दिए, 1 कन्या दी, बोलो इतना सम्मान दिया, और कृष्ण की रानी के रूप में उन्होंने जीवन बिताया पूरा। व्हाट अ स्टेटस, जो मरने के लायक जीवन था वो रानी के लेवल पे छोड़ दिया उनको। तो जब तक हमको पता नहीं होता ना, तब तक हम लोग ऐसी बकवास करते हैं कि तुम्हारे भगवान हिंदू धर्म के, देखो एक तो शादी के पहले मिडिल नाइट में डांस करते हैं और शादी करने के बाद में ढेर सारे शादी करते हैं, और देखो कितना एंजॉयमेंट करते हैं, 10-10 पुत्र एक एक पत्नी को, एक एक कन्या एक एक पत्नी को, इतना इनका फैमिली लाइफ है। मतलब क्या है? एनवी है मन में। कोई सुंदर उत्तर दिया हमारे एक भक्त प्रभु जी ने, वो कहते हैं वो मंदिर में आया, देखा भगवान की थाली जा रही है, उसमें ब्रेकफास्ट की थाली में 6 स्वीट्स है, 6 पकौड़े हैं, 6 प्रकार के, तो ले क्या जरूरत है इनको करने की, इतना क्यों खाते हैं? तो प्रभु ने उनको बहुत अच्छा उत्तर दिया, आपको भगवान बनना है कोई बात नहीं, आप उनकी तरह खड़े रहो ऐसे दिन रात, 10 मिनट खड़े को दिखाओ ना, 24 घंटे के बाद छोड़ दो। फिर उनको हम 6:30 उनको हम मंगल भोग लगाते हैं, उसमें 6 स्वीट रहते हैं। फिर 8 उनको बाल भोग लगाते हैं, उसके अंदर भी 6 स्वीट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लंच में तो 20-25 आइटम होते हैं, फिर 4 उठाते तो फिर और कुछ आइटम होते हैं, फिर शाम को 6:30 संध्या भोग होता है, फिर रात को शयन भोग होता है, उसमें भी 6 स्वीट खाते हैं, कितने ड्रिंक्स रहते हैं उसके अंदर। मतलब आप एक दिन 6 ये सब खा के दिखाओ, फिर आगे हम भगवान आपको बनाने का सोचते हैं। अरे एक मील नहीं खा सकते उनका आप, और भगवान बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो बोलते हैं कि अरे क्या बीच की रात में उधर लेडीज़ का डांस करते हैं, मतलब गोवर्धन को भी उठाया उन्होंने ना, आप उसको उठाओ, शंकर भगवान ने इतना जहर पिया उसको आप पियो, बाद में फिर गांजा चरस की बात करो, बोले शंकर भी गांजा पीते हैं हमको भी करना है, अरे किसने देखा है, लेकिन बोलने में क्या जाता है, भांग पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, लेकिन उन्होंने समुद्र मंथन का विष भी पिया था, उसका क्या। तो इसलिए नॉलेज होना चाहिए कि भगवान ने इतनी हजारों साल की पत्नियों को क्यों विवाह किया, वो विवाह करने की तमन्ना नहीं, वो करुणा ज़्यादा है उसके अंदर, कंपैशन ज़्यादा है उद्धार करने का जीव का। तो फिर क्या किया उन्होंने, कहा डोंट वरी, आपको आत्महत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे विवाह करूँगा, मैं द्वारका का राजा हूँ, मैं आपको विवाह करूँगा, यथासांग विवाह करूँगा, आखिर अभी मुझे अर्जेंट काम से स्वर्ग जाना है। तो उन्होंने ना 16,100 पालकियाँ मंगाई सत्यभामा के सम्मति से, क्योंकि वो वहाँ खड़ी है, उसके सम्मति से वो पालकियाँ मंगाई, सब रानियों, सब जो अभी रानियाँ नहीं बनी हैं, अभी तो कन्याएं हैं, सबको ना अलंकार पहनाए, राजवस्त्र तभी पहना दिए, और पालके में बिठा के 4 व्यक्तियों को उठाकर 16,100 पालकियाँ द्वारका भेज दी उन्होंने, और अपनी माता यार कुंती देवी या रोहिणी इनके पास उनको जमा कर दिया, मतलब इनकी रक्षा करो, मैं अभी मेरा काम करके आता हूँ, फिर सबसे विवाह करूँगा, फिर हम लोग मैरिज सेरेमनी अरेंज करेंगे। तो सुबह सत्यभामा की सम्मति से उनका आशीर्वाद लेके सभी 16,100 कन्या जो है वो घर पे चली गई, अभी विवाह नहीं हुआ है लेकिन शी देयर स्टेइंग देयर। फिर भगवान कहाँ गए? स्वर्ग लोग गए। अभी स्वर्ग लोग गए तो भगवान तो पृथ्वी के है ना, भगवान तो भगवान है, फिर भी अभी मनुष्य मानुष्यम तनु आश्रितम, मनुष्य शरीर में अपने आप को जीवन चला रहे हैं ना, लीला कर रहे हैं। सत्यभामा भी पृथ्वी की माता है, वैसे वो पृथ्वी का ही स्वरूप है, बाय द वे भू देवी का स्वरूप सत्यभामा है, शी इज हरसेल्फ भू देवी। तो उसको लेकर स्वर्ग गए, तो स्वर्ग में इंद्र की माता अदिति ने उनका स्वागत किया है, उसका ओटी भरा है, सौभाग्यवती के रूप में। और स्वर्ग का जो नंदनवन का फूल है सौगंधिका, वो उसके गोद में दिया है, क्योंकि बहुत सुगंध वाला और हजार पंखुड़ी वाला वो कमल होता है। कितना बड़ा होगा, आई कांट इमेजिन। हमारा तो कमल इतना सा होता है, उधर पॉन्ड में खिलता है, इतना इतना होता है। वो हजार पंखुड़ी कमल कितना बड़ा होगा, उसकी खुशबू इतनी होती है कि कोसों तक खुशबू चलती है उसकी। वो उसने एक दिया उसको, और उसमें लिखा है जीव गोस्वामी ने कि अदिति को भी बहुत गर्व था स्वर्गीय होने का, और वो भगवान और उसकी पत्नी पृथ्वी से आ रहे हैं। बोले पृथ्वी से आ रहे हैं, इनको एक ही फूल दो, ज़्यादा मत दो, ज़्यादा फूल लेने की इनकी योग्यता नहीं है, पृथ्वी के लोग हैं। ऐसे करके उसकी उटी भरी, मतलब भगवान से इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। यही प्रॉब्लम है देवताओं का। देवताओं का प्रॉब्लम क्या है, देवता के पास में इतना ऐश्वर्य है कि वो भगवान को भी भूल जाता है उस ऐश्वर्य के सामने। अभी पृथ्वी का कोई धनी व्यक्ति होगा, इतना धन है उसका, इतना धन है कि भाई 10 पीढ़ियाँ भी बैठ के खा सकती है, लेकिन उस धन भगवान के सामने कुछ नहीं है वो, लेकिन उसके लिए इतना धन है वो, तो उस धन में इतना वो गर्विष्ट हो जाता है कि सामने भगवान भी खड़े हो गए तो भी तिना तान के चलता है, अरे मैं तो धनी आदमी हूँ, सब भगवान का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं हूँ धनी पति, तो मैं हूँ, मैं लक्ष्मीपति हूँ ऐसे सोचता है वो, लक्ष्मी पुत्र हूँ ऐसे सोचता है। लेकिन ये जो धन के साथ में अपने आप को जोड़ना और अपने आप की पहचान धन के साथ बनाना, इससे क्या होता है, भगवत चेतना नष्ट हो जाती है। भगवान के विषय में जानकारी होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती है, क्योंकि अपने विषय में इतनी गर्विष्ठ जानकारी है आपकी कि भगवान फिर टिकते नहीं आपके मन में, धन ही टिकता है, क्योंकि इतना गर्व जो इतना फेविकल लगा के रखा है मन में, कैसा भगवान चिपकेंगे वहाँ पर, धन ही चिपका हुआ है पूरा। इंद्र के पास गए, इंद्र ने अपने कुंडल लौटा दिया, देखो भगवान स्वयं, इंद्र भी पहचान रहे कि ये भगवान है भाई, ये भगवान मेरे घर पे आए। उनका आसन पे बिठा के, सिंहासन पे बिठा के चरण का प्रक्षालन किया, अभिषेक किया, आरती किया, भोजन कराया, स्तुति की, ब्राह्मणों ने श्लोक बड़ा बोले, फिर अंदर ले गए, सुभद्र सत्यभामा का ओटी भरी, सत्कार किया सौभाग्यवती का, कुंडल लौटा दिए, भगवान ने विदा लिया और भगवान चले। तो चले तो रस्ते में रथ में नंदन बनाया, तो भगवान ने कहा प्रिय आपको पेड़ चाहिए था ना, उठा लो एक पेड़। तो उसने एक पेड़ लिया, उसमें से पेड़ लेते ही इंद्र के सैनिक भाग के आए, हे आपको, आप कैसे उठा रहे इसको, इंद्र का परमिशन है क्या आपके पास, हम इंद्र का वन है ये पूरा। तो भगवान को लगा, अरे मैंने ही इंद्र को दिया है, सभी राजा भी इंद्र को मैंने ही बनाया है, इंद्र लोक अमरावती भी मैंने दिया है, उसका पोस्टिंग भी मैंने किया इधर। तो उनको नहीं पता है, उन्होंने जाकर इंद्र को खबर किया कि कोई तो आपके घर से मेहमान आए थे ना, वो आप पेड़ उठा के लेके जा रहे हैं। अभी इंद्र को पता है ना, अभी कुछ देर के पहले कौन से मेहमान आए थे मेरे पास, मेरे भगवान आए थे जिन्होंने मुझे इंद्र बनाया, जिनकी वजह से मैं हूँ, उनके चरण धोए मैंने कुछ मिनट पहले। लेकिन जैसे ही पता चला कि भगवान ने मुझे पूछे बिना मेरे नंदनवन का पारिजातक पेड़ उठाया, तो इंद्र ने भगवान पर आक्रमण किया। बोलो, हम और आप भी नहीं करेंगे, थोड़ी तो बुद्धि रखेंगे ना, तो इंद्र क्यों नहीं रख पा रहे हैं और हम लोग क्यों रख पा रहे हैं, क्योंकि इंद्र के पास इतना धन, इतना ऐश्वर्य, इतनी आसक्ति है उसके प्रति कि सहन नहीं हो रहा है कि मुझे क्यों नहीं पूछा। तो भगवान ने एकदम आसानी से युद्ध करके उसको परास्त करके उसको होश में लाया, भैया समझो मैं कौन हूँ, तो फिर दंडवत किया। अब यह कभी हुआ था पता है, कुछ दिन पहले भगवान ने गोवर्धन को उठाकर उसका घर वर्णन किया था, ये भी सुन लो, क्योंकि यहाँ के 6 महीने वहाँ का 1 दिन होता है। तो वहाँ के कुछ दिन पहले ही, मतलब यहाँ के कुछ साल पहले, वहाँ के कुछ दिन पहले ना, 6 महीने का 1 साल मतलब 2 साल में कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 साल बीत गए तो कितने दिन हो गए, 20 दिन बीत गए, आपके लिए तो महीना भी नहीं बीता, और भगवान तो उस समय 7 साल के थे, अभी शायद 25 साल के होंगे या 50 साल के होंगे, चलो कुछ भी मान लो, कितने दिन हो गए, ज़्यादा दिन नहीं हो गए। अभी अभी संवर्तक बादलों को भेजकर वृंदावन को नष्ट करने का प्रयास किया गया था, तो 7 दिन 7 रात गोवर्धन को उठाकर एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं दिया, सारा इंद्र का गर्व जो है वज्र भी परास्त कर दिया भगवान ने। तो होश में कितने आए, होश में आके पश्चाताप हुआ, भगवान का अभिषेक किया, सब कुछ किया था, अभी अभी आंखें खोली थी इसकी, अभी अभी उसके बाद घर पे भी गए थे, पर उसकी माता के कुंडल जो जिससे भयभीत था इंद्र, उसके हाथ से वध करके छीन के लाए गए, तुमको वापस लौटा दिए, और अभी तो कुछ कुछ भी क्षण नहीं हुए स्वर्ग के, फिर भी पेड़ उठाया इसलिए आक्रमण कर रहे हैं। देखो इसलिए इंद्र का जीवन हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारा भाग्यशाली जीवन है इंद्र से अधिक। इतना ऐश्वर्य है कि सब भूल जाता है। एक बार रंभा और उर्वशी खड़ी हो गए सामने तो कोई दिखता ही नहीं भगवान भगवान, इतना भोग लेने की शक्ति है उधर और इतना भोग की व्यवस्था भी है। इंद्रिय भी पावरफुल है और भोग भी पावरफुल है, तो किधर भगवान बीच में आएंगे। इसलिए हमारा जीवन अच्छा है। तो इंद्र को वापस शांत किया, वापस प्रणाम किया, सॉरी बोला, वापस चले गए। ऐसे 50 बार सॉरी बोला है भगवान को, 50 बार गलती करके, सोचो आप सोचो। तो ये सब जो नरक चतुर्दशी का दिन है, इस दिन नरकासुर का वध भगवान ने किया था। वो कितनी बड़ी बड़ी कहानी है इसके अंदर, सोचो आप। इसमें बहुत सीखने लायक चीजें हैं। भगवान का पुत्र भी आप होंगे ना तो भी आप माया प्रूफ नहीं है। माया के साथ आपको खुद लड़ना होगा और खुद बचना होगा। और भगवान का पुत्र है इसलिए आप मिसबिहेव करोगे तो भी आपको भगवान छोड़ते नहीं है। भगवान ने खुद वध किया उनका, खुद एक अवतार के साथ जन्म दिया उसको, दूसरा अवतार लेके अपने हाथों से वध कर दिया। बोलो भगवान बल में किस पर प्रेम करते हैं, बताओ भगवान किस पर प्रेम करते हैं? अपने भक्तों पर जो शरणागत हैं उन पर प्रेम करते हैं, अपने पुत्र पर भी प्रेम नहीं करते हैं। वो उद्धव को बता रहे हैं 11वें स्कंद में, हे उद्धव तुम मेरे भक्त मुझे इतना प्रिय हो कि मेरी पत्नी लक्ष्मी, मेरे भैया बलराम जी भी मुझे इतने प्रिय नहीं है जितने आप मुझे प्रिय हो। कितना बड़ा वाक्य कहा उन्होंने, अरे बलराम भैया और पत्नी लक्ष्मी देवी इससे अधिक तुम मुझे प्रिय हो। ऐसे भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को कि तुम भक्त मुझे इतने प्रिय हो कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कभी लक्ष्मी जी के चप्पल उठा के भगवान काख में दबाकर चले, ऐसा आपको पढ़ा है आपने? लेकिन रुक्मिणी के जूते उठाकर काख में दबाकर भगवान चले हैं, अर्जुन के रथों का घोड़ों का थपथपाया है उन्होंने, खाना खिलाया उनको, मसाज किया है, मॉलिश किया है। और ऐसा भी लिखा है महाभारत में कि अर्जुन के रथों के घोड़ों के चरणों की धूल भगवान ने लगाई मेरे सर पे, कि मेरा परम प्रिय भक्त जो अर्जुन है उसके घोड़े ही है, उसके सेवक है, दास दासा अनुदास, ये समझकर अर्जुन के घोड़ों के चरणों की धूल अपने सर पे लगाई है भगवान ने। तो बाकी लोगों के लिए समस्त सर्वेशु भूतेषु, बाकी किसमें भेदभाव नहीं है, लेकिन भक्त को अपना पर्सनैलिटी करते हैं, वो बोलते सबको समो समोहम सर्वभूतेषु, वो सही भी है लेकिन फिर भी भक्तों पर ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान। और अपना पुत्र होने पर भी, इसलिए केवल बड़े बाप का बड़ा बेटा बनने से हम लोग फुल प्रूफ नहीं हो जाते हैं, अपने को अपना स्थान निर्माण करना जरूरी है। केवल बड़े बाप के बड़े होने पर एतराज मतलब क्या, एतराना जरूरी नहीं है। डोंट हैव टू बी प्राउड विद द रिच पेरेंटेज। और जो गलत काम करता है भगवान उसको पीटते ही हैं, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, भगवान के हाथ से कोई बचता नहीं है। इसलिए जब आदमी कंस जैसा आदमी बनता है, रावण जैसा बनता है, उसको लगे मैं तो राजा हो गया वर्ल्ड का, भी मेरे सामने कोई है ही नहीं, सबको मैंने परास्त कर दिया, आई एम द बॉस। हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, सब लोग इसी मूड में थे। अभी भगवान भी मैं बनूंगा, यहाँ से सीढ़ी बनाऊंगा और पाप किए भी आप जाके चढ़ के स्वर्ग में जा सकते हो। रावण ने सीढ़ी बनाया था ऐसे, डायरेक्ट स्वर्ग लोक बिना पुण्य के, लेकिन सफल नहीं हुआ वो, एंड में उसका भी वध हो गया। तो हमारे हर त्योहार में एक कहानी है और हर कहानी में अनंत उपदेश हमारे लिए छुपे हुए हैं। वो जानना, उसको सुनना, उसको आत्मसात करना, उसको जीवन में उतारना, ये रियल फेस्टिवल है। हम लोग क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं और नरका चतुर्दशी के दिन सुबह 4 बजे लोग उठते हैं, हम भी बचपन में उठते थे, और एक फल मिलता है मार्केट में कारेट नाम का, वो लेकर उसको पैर से कुचलते हैं नरकासुर को नष्ट करने के भाव से, कि नरकासुर का जो पापी राक्षसी भाव था उसको हम नष्ट करके पवित्रता को अपनाते हैं और रंगोली में दीपक जलाते हैं। तो ऐसे हमारे सब उत्सव हैं। और अगले दिन दीपावली होती है ना अमावस्या के दिन, उसी दिन दशहरे के दिन प्रभु रामचंद्र ने रावण को मारा था विजयादशमी, और उसके बाद में वो तो लंका में युद्ध हुआ था ना, युद्ध में लंका में थी, फिर उधर के उधर ही सब कुछ सेटलमेंट किया। पुष्पक विमान विभीषण ने भगवान को भेंट दिया, फिर भगवान सबको विदा किया, सबको डिस्कशन किया, विभीषण को राजा बनाया और सबको लेकर वो पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या में उतरे। वो दिन दीपावली का दिन था, इसलिए प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। इस आनंद से सब लोगों ने सुगंधित जल जो है अपने भूमि पर छिड़का, हाथी में बैठकर सब जल छिड़का और सब घर में रंगोली बनाई गई, शुभ शुभ चिन्ह जो है वो सब अपने आंगन में बनाए गए और सब लोगों ने घी के दीपक जलाए और उसके प्रकाश से शुभ शुभ वातावरण निर्माण किया प्रभु के स्वागत के लिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय और असतोमा सद्गमय, यानी ज्योति निर्माण करके एक आनंद और उत्साह और पवित्रता का मैसेज दिया लोग सबको कि प्रभु जब